श्लोक मिश्राणि नाटकादीनि तेषाम् अन्यत्र विस्तरः गद्य पद्य मयि कापि चम्पूरित्य विधीयते। मिश्र काव्य नाटक आदि होते हैं, उनका विवरण अन्य ग्रंथों में किया गया है। गद्य और पद्य से निबद्ध कोई काव्य विधा चम्पू कहलाती है। काव्य शरीर के तीन प्रकारों में से दो पद्य बद्ध और गद्य बद्ध का प्रतिपादन करने के बाद आचार्य दंडी ने इस श्लोक में मिश्र विधा का स्वरूप बताया है। इस विधा में गद्य और पद्य का समान महत्व होता है, अतः यह प्रसंगवश यत्र तत्र पद्य प्रवेश वाले गद्य काव्य से भिन्न है। स्वतंत्र काव्य विधाओं के प्राथम्य की दृष्टि से आचार्य ने पद्य को प्रथम स्थान दिया है, किंतु यहाँ मिश्र काव्य के चम्पू नामक भेद में उन्हीं गद्य और पद्य का क्रम रखा है। अर्थात मिश्र काव्य शरीर चम्पू में मुख्यतया गद्य की होती है, पद्य का स्थान उसके बाद आता है। गद्य और पद्य दोनों के मिश्रण से निबद्ध काव्यों के दो भेद होते हैं। नाटक आदि दृश्य काव्य तथा चम्पू नाम से प्रसिद्ध श्रव्य काव्य विनियोग की दृष्टि से दृश्य और श्रव्य में विभाजन आगे किया गया है। शरीर के घटक तत्व छंद के प्रयोग और अप्रयोग के मिश्रित प्रयोग की दृष्टि से विभाजन के अंतर्गत नाटक आदि चम्पू संज्ञक काव्यों को लिया गया है। कथा के पात्रों के रूप का आरोप करने के कारण नाटक आदि रूपक कहलाते हैं। रूपक के 10 भेद होते हैं। इनका सर्वांगीण विवेचन शिलाली भरत कोहली आदि प्राचीन आचार्य द्वारा नाट्यशास्त्र में तथा अर्वाचीन आचार्य धनंजय द्वारा 10 रूपक में किया गया। अतः नाटक आदि अवलोकन वही से करे। चंपू की भित्ति भी सर्ग बंध और आख्यायिका आदि के समान होती है, अतः उसका निबंधन के प्रकार से भिन्न स्वरूप सर्गबंध तथा आख्यायिका के समान ही समझना चाहिए। इसलिए दंडी ने चम्पू का पृथक से निरूपण करना उसी प्रकार आवश्यक नहीं समझा प्रतीत है, जिस प्रकार की उन्होंने गद्य काव्य का निरूपण भी सर्गबंध लक्षण में समाहित मानकर नहीं किया है। हेमचंद्र गणी ने चम्पू को उच्छासों में विभाजित बताया है। रत्नश्री ज्ञान ने जातक माला दमयंती आदि चम्पू काव्यों का उल्लेख किया है। वर्तमान में 130 से ऊपर प्रकाशित अप्रकाशित चम्पू काव्य उपलब्ध हैं। श्लोक तदिदं वांगमयं भूयः संस्कृतं प्राकृतं तथा अपभ्रंशस्य मिश्रं चेत्याहु राप्ताश चतुर्विधम्। प्रामाणिक लोग उस इस वाणी निबद्ध काव्य शरीर को पुनः एक और दृष्टि से संस्कृत प्राकृतिक अपभ्रंश और मिश्र इस प्रकार चार तरह का बतलाते हैं। निबंधन के प्रकार के आधार पर काव्य शरीर के पद्य गद्य और मिश्र भेद बताने के बाद आचार्य ने भाषा के आधार पर चार भेद 32वें श्लोक में बताए हैं। भरत के रूपक के पाठ के दो भेद संस्कृत प्राकृतिक भाषा के आधार पर बताए हैं। भामा ने इनमें एक भेद अपभ्रंश को और जोड़ दिया। दंडी ने उनमें एक और भेद की वृद्धि की। एकाधिक भाषाओं के मिश्रण वाला काव्य शरीर चौथा भेद है। वात्स्यायन ने काव्य गोष्ठियों में केवल संस्कृत और केवल देश भाषा के प्रयोग का निषेध करके दोनों भाषाओं के मिश्रण का मार्ग प्रशस्त किया है। दंडी के भाषा मिश्रण का आधार वात्स्यायन का यही विधान प्रतीत होता है, इसलिए उन्होंने इसे आप्त प्रामाणिक लोग कहते हैं कहा है। श्लोक संस्कृतम नाम दैवी वागन वाख्याता महर्षि भी तद्भवम तत्सम देशित्यनेक प्राकृत क्रमः। महर्षियों द्वारा नियमबद्ध की गई दिव्यवाणी का नाम संस्कृत है। प्राकृतिक का स्वरूप उस संस्कृत से उत्पन्न उसके समान देशज इस प्रकार अनेक तरह का है। भाषा के भेद के आधार पर किए वांग्मय काव्य के चार भेदों में से प्रथम आधार संस्कृत भाषा क्या है, यह संस्कृत के अन्य भाषाओं का आधार होने के कारण सर्वप्रथम बताया है। नेम भार्गव सदनी वैरूप कुत्स अंगिरस और वामदेव गौतम आदि ऋग्वेदीय ऋषियों के अनुसार वाणी देवताओं की देन है। इसी भाषा का संस्कार शिष्टो शाकल्य शाकटायन पाणिनी आदि ने किया, तो छांदस भाषा का यह परिष्कृत रूप संस्कृत कहलाया। यह नाम सबसे पहले वाल्मीकि द्वारा प्रयुक्त मिलता है। भर्तृहरि ने इसे दैवी वाक कहा है। व्याकरण के अनुशासन में बद्ध होने के कारण इसके देशज भेदोपभेद नहीं पनप पाए। अद्यावत यह भाषा उसी पाणिनी द्वारा अनुशिष्ट रूप में चली आ रही है। 32वें श्लोक के पूर्वार्ध में ख एक संस्कृत का स्वरूप बताने के बाद उत्तरार्ध में प्राकृतिक भाषाओं के विकास की प्रक्रिया बताई है। प्राकृतिक शब्द प्रकृति से निष्पन्न तद्धि शब्द है। प्रकृतेरागतम अर्थात यह प्रकृति की विकृति है। प्रकृति से मूल भाषा अभिप्रेत है। या प्रकृति शब्द स्वभाव अर्थ में है। लोक स्वभाव से प्राप्त प्रकृति शब्द आम जनता वैदिक विषय का भी वाचक है। अतः जनता की भाषा प्राकृतिक है। आम लोग गरीबी या प्रमाद के कारण शिक्षा प्राप्त न कर पाने से तथा संस्कार आधायक गोष्ठी समाज आदि में भाग न ले पाने से प्रकृति भाषा लोक व्यवहार की मूल भाषा का ठीक ठीक उच्चारण और सही प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो वे उस प्रकृति भाषा की ध्वनियों को विकृत करके बोलते हैं और प्रयोग भी व्याकरण की दृष्टि से या अभिजात शिक्षित वर्ग के स्तर की भाषा की दृष्टि से गलत सलत करते हैं। यह एक सार्वभौम सार्वकालिक प्रवृत्ति प्रकृति लोक का स्वभाव है। इसके परिणाम स्वरूप विकसित भाषा प्राकृतिक है। ऋग्वेद के ऋषियों ने इस प्रकार की प्रकृति प्रवृत्ति के फलस्वरूप विकसित भाषा को मृग वाक कहा था तो ब्राह्मण में मिलेक्ष कहा गया। व्याकरणों ने उदाहरणतः व्याडी पतंजलि और भर्तृहरि ने इसे अपभ्रंश नाम दिया और काव्यशास्त्री भरत ने भी भ्रंश। इस प्रवृत्ति का साक्षात कारण एक तरफ तो लोगों द्वारा भाषा के सूक्ष्मतम घटक वर्णों के उच्चारण स्थानों आभ्यांतर और बाह्य तथा लघु दीर्घ आदि मात्रिक प्रयत्नों का अपेक्षित रूप से प्रयोग स्वभावतः और शिक्षा के अभाव के कारण न कर सकने से शुद्ध रूप में उच्चारण नहीं कर पाना है तो दूसरी ओर शिक्षा के अभाव के कारण तथा शिष्ट प्रयोग का सम्यक ग्रहण न कर पाने के कारण व्याकरण का सम्यक ज्ञान न होने से शुद्ध भाषा का प्रयोग करने में असमर्थता है। आम आदमी को उच्चारण में कठिनाई संयुक्त व्यंजनों का तथा विशेष रूप से करण के प्रयोग में विशेष यत्न से साध्य स्थान और प्रयत्न का प्रयोग करने में आती है। प्रकृति भाषा के शब्दों से तद्भवता की प्रक्रिया यह है। अतिरिक्त वर्णन का आगम हो जाता है। वर्णों में अदला बदली हो जाता है। वर्णों में स्थान प्रयत्न की दृष्टि से विकार हो जाता है। वर्णन का नाश हो जाता है। भर्तृहरि ने इसे ही प्रयोक्ताओं की विगुणता और अशक्ति कहा है जिससे साधु शब्द अपभ्रंश बन जाता है। इस प्रकार विकृत वर्णोच्चारण तथा व्याकरण की या शिष्ट प्रयोग की दृष्टि से संस्कार विरुद्ध होने से विकृति हुई। भाषा मूल प्रकृति भाषा से अवगत होने के कारण प्राकृतिक कहलाती है। स्वभावतः जनता आदि इस संज्ञा का आधार नहीं है। समाजशास्त्री अध्ययन की दृष्टि में यह नाम संभव हो सकता है पर भारतीय मानस में भाषा शास्त्र की प्रतिष्ठा रही है अतः इस संज्ञा का आधार आधाराध्येय भाव संबंध से भाषा रही। शेष संबंध से स्वभावतः स्वभाव या जनता नहीं। शौरसेनी महाराष्ट्री आदि में अवश्य शूरसेन महाराष्ट्र आदि देशों से वहाँ की प्रजा लक्षित होती है पर यह उपभेदों के नामकरण की बात है। सामान्य आधार भाषा प्रकृति है। विशेष का आधार लोक प्रजा है। इस प्रकार की प्राकृतिक भाषा कुछ अंश उस प्रकृति भाषा के समान ही होती है। कुछ अंश उससे विकृत होकर उत्पन्न होती है तो कई देशज विशेषताएं भी नए शब्दों नई अभिव्यक्तियों या नई ध्वनियों के रूप में पनप जाती हैं। व्याकरण के आधारभूत ढांचे में भी विकास से यही तीन क्रम होते हैं। इस प्रकार तत्सम तद्भव और देशी यह क्रम है मार्ग है। किसी भी भाषा से दूसरी भाषा के पनपने का प्रारंभ में तत्समता अधिक होती है फिर तद्भवता बढ़ जाती है। यह तद्भवता जब देश विशेष में व्याप्त होकर देश के अन्य भागों की भाषा से विशिष्ट रूप धारण कर लेती है तब वह परिपक्व होकर देशज या देश भाषा का रूप ले लेती है। इस स्थिति में आकर नई भाषा मूल भाषा से उच्चारण और व्याकरण दोनों स्तरों पर तद्भव और देशी हो जाती है। मूल भाषा से तत्समता आधार के रूप में रह जाती है। नैरुक्तों ने संस्कारयुक्त भाषा के इन्हीं तीन रूपों को प्रत्यक्ष वृत्ति परोक्ष वृत्ति और अति परोक्ष वृत्ति नामों से प्राकारांतर से तथा किंचित प्रसंग भेद से कहा है। जब तक प्राकृतिक भाषा अभिजात वर्ग में प्रभावशाली बनी रहती है तब तक यह नई भाषा अपभ्रंश विभाषा प्राकृतिक और देश भाषा कहलाती है। सामान्य भाषा संज्ञा तो इसे पुरानी अभिजात भाषा को पदच्युत करने पर ही मिलती है। शुद्धि के आग्रही शास्त्रकारों में व्याकरण व्याडी पतंजलि और भर्तृहरि के द्वारा अपभ्रंश काव्यशास्त्री भरत द्वारा विभ्रंश नाम से की गई है। इस प्रकार मूल भाषा से भ्रंश की पद्धति से प्रकृति से विकसित भाषा मूलतः यौगिक अर्थ में प्राकृतिक कहलाकर समय बीतने के साथ योगरूढ़ होते हुए अभिजात वर्ग द्वारा अपनाई जाकर प्रदेश में विकसित भाषाओं के लिए रूढ़ हो गई। भरत ने इसके लिए प्राकृतिक देश भाषा और भाषा संज्ञाओं का प्रयोग सही ही किया है। इस विवरण से यह स्पष्ट है कि मूल भाषा का वंश ही प्राकृतिक बनने का आधार है। संभवतः इसी कारण दंडी ने तद्भव को प्रथम रखा है। रत्नश्री में प्राकृतिक का एक चौथा सामान्य प्रकार भी बताया है। श्लोक महाराष्ट्राश्रयं भाषा प्रकृष्टं प्राकृतं विदुः सागरः सूक्ति रत्नानां सेतु बंधादि यन्मयम्। महाराष्ट्र में आश्रय वाली भाषा को उत्तम प्राकृतिक जानते हैं, जिसमें निबद्ध सेतुबंध आदि सुभाषित रूपी रत्नों का सागर है। व्याकरण के अनुशासन के कूलों को तोड़ के वह चली यह जनभाषा सरिता की अनुशासन प्रिय अभिजात वर्ग में स्वीकृत होने पर स्वयं अनुशासन में बद्ध होने को बाधित हो गई। भाषा शास्त्रियों ने संस्कृत के समान इसका भी अनुशासन कर दिया, तब यह भाषा भी देश प्रदेशों में इसके जितने रूप बन पाए थे उनसे आगे नहीं बढ़ पाई। उन रूपों की चर्चा अगले दो श्लोकों में की गई है। चाहे काव्य की रचना शैली हो या भाषा में होने वाला विकास, इसका वर्गीकरण देश के आधार पर बड़ी सरलता से किया जा सकता है। हवा पानी खान पान रहन सहन बोलने चलने का ढंग आदि अपनी देशज विशिष्टता लिए रहती है। परिणामतः एक इलाके के लोगों की शैली और भाषा का विकास भी एक तरह का होता है। यही कारण है कि देश भेद से भाषा भी बदल जाती है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में इस स्थिति को विवाच शब्द से प्रकट किया गया है। संभवतः अभिजात वर्ग की अनुशासन प्रिय के कारण समूचे भारतवर्ष में समान रूप में प्रचलित संस्कृत भाषा का विकास इन्हीं भिन्न भिन्न बोलियों की आधारभूत प्रवृत्तियों के कारण देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह से हुआ। संस्कृत से विकसित प्राकृतिक का वर्गीकरण देश की विशालता को देखते हुए 7 भागों में किया उपलब्ध होता है। दंडी ने इनका परिगणन 4 मुख्य भागों में करके शेष का कथन इसी प्रकार की और कहकर किया है। महाराष्ट्रीय सूरसेनी ब्रजमंडल अर्थात मध्य भाग के पश्चिमोत्तर भाग में प्रचलित, गौड़ी लाटी गुजरात सौराष्ट्र मध्य दक्षिण पश्चिम भागों में प्रचलित तथा देश के अन्य भागों में प्रचलित ऐसी ही व्यवहारों में अर्थात साहित्य में प्रयुक्त भाषाएं। दंडी ने भाषाओं का यह परिगणन भौगोलिक आधार पर सब प्राकृतों का परिगणन करने को नहीं किया है, अपितु साहित्य में प्रयोग के कारण लभ्य महत्व को दृष्टि में रखकर किया है। सन्निधि इसी महत्व को प्रकट करता है। इनका क्रम भी इनमें निबद्ध साहित्य के महत्व के तारतम्य के आधार पर दिया गया है। महाराष्ट्रीय प्राकृतिक दक्षिण की प्राकृति की प्रतिनिधि है। इसे सर्वप्रथम स्थान दंडी ने स्वयं के दाक्षिणात्य होने के कारण दक्षिण की भाषा के प्रति विशेष राग के कारण नहीं दिया है, अपितु उसके भौगोलिक तथा साहित्यिक महत्व के कारण दिया है। महाकवि प्रवर सेन ने स्कंध छंद में राम कथा का गान प्राचुर्येण महाराष्ट्र प्राकृति में निबद्ध सेतुबंध नामक महाकाव्य में किया है। दंडी इस काव्य को महाराष्ट्र प्राकृति का गौर ग्रंथ मानते हैं। यह काव्य सुंदर शब्दों के द्वारा सुंदर अर्थों की अभिव्यक्ति रूपी मोतियों का सागर है। महाकवि बाण ने भी इस काव्य की बहुत प्रशंसा की है। आदि शब्द से स्यात् महाराष्ट्रीय प्राकृति का दूसरा गौरव ग्रंथ सातवाहन हाल का मुक्तकोश गाथा सप्तशती गाथा सप्तशती अभिष्ट है। बाण ने इसकी भी भूरी प्रशंसा की है। श्लोक शौरसेनी च गौड़ी च लाटी चान्या च तादृशी याति प्राकृति मित्येव व्यवहारेषु सन्निधिम्। सूरसेन में अद्भुत, गौण में उत्पन्न, लाट में उत्पन्न और वैसी ही अन्य लोक व्यवहार में प्राकृति के रूप में सन्निधि प्रयोग को प्राप्त करती है। शौरसेनी प्राकृतिक मध्यदेशीय प्राकृतों की प्रतिनिधि है। इसका महत्व साहित्यिक दृष्टि से तो है ही। भारत की बहुत सी मध्यकालिक और आधुनिक महत्वपूर्ण भाषाओं को जन्म देने की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है। गौण और लाड देशों की प्राकृति क्रमशः पूर्व और पश्चिम की प्राकृतों की प्रतिनिधि है। ये भी इसी प्रकार साहित्यिक दृष्टि से और भी भाषाओं का उत्स होने के कारण महत्वपूर्ण है। अन्या से उत्तर की पैशाची आदि प्राकृति में अभिष्ट है। पैशाची के महत्वपूर्ण ग्रंथ बड्ढ कहा का बृहत कथा के नाम से उल्लेख आगे 138 में किया गया है। इन प्रदेशों का साहित्यिक महत्व केवल इनकी भाषाओं के कारण ही नहीं अपितु काव्य की शैलियों की दृष्टि से भी है। भारत ने इन्हीं देशों की प्रवृत्तियों अर्थात शैलियों का विशेष उल्लेख किया है। इतना ही नहीं, भामह और दंडी द्वारा प्रोक्त वैदर्भ और गौण मार्ग तथा वामन द्वारा प्रोक्त वैदर्भी गौणी और पांचाली रीतियां भी इन्हीं प्रदेशों पर आधारित हैं। सेतुबंध पर सागर का और उसकी पूर्ति के लिए सूक्तों पर रत्नों के आरोप के कारण 34वें श्लोक में अश्लिष्ट परम्परित केवल रूपक अलंकार है।